आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होगा मतदान। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को की जाएगी निर्बाध 10 घंटे बिजली आपूर्ति। गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3,75,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे। इनमें 122 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को हर हाल में 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी।
हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुलटे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस सर्कुलर को लेकर जन सामान्य में गलतफहमी पैदा हुई, उस विवादित सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार ने किसानों के समग्र उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 4th राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के 25,00,000 से अधिक लोगों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेस ऑथेंटिकेशन अपनाई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल की मंगोलिया और मालदीव सहित कई देशों ने सराहना की है। उन्होंने बताया कि यह अभियान इस महीने के अंत तक चलेगा। श्री सिंह ने इस अभियान पर एक पुस्तिका और एक लघु फिल्म का विमोचन भी किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन 2025 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के साथ साथ मांग सृजन और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के व्यावहारिक तरीकों पर ज्ञान प्रसार करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के उत्कृष्ट एयर शो का अवलोकन किया। एयर शो के कौशल और सटीकता के इस अद्भुत प्रदर्शन ने आयोजन में देशभक्ति का माहौल पैदा किया। ये एयर शो छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव समारोह के राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश गुरु पर्व आज धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ, कीर्तन दरबार और लंगर जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारे में आयोजित लंगर कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवपुरी सहित अन्य जिलों में भी गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों में अरदास की गई तथा विशेष पाठ के साथ कीर्तन हुए। आज कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह जहां श्रद्धालु पवित्र जलाशयों में स्नान कर पूजा अर्चना किया करते हैं, वहीं गोधूली बेला में घरों, मंदिरों और जलाशयों के घाटों पर दिए जलाकर दीपदान भी किया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। खंडवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु जलाशयों में स्नान कर पूजा अर्चना और दीपदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से नागालैंड की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधार नागालैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए कर ढांचे के अंतर्गत 7,500 रुपए तक की कीमत वाले होटल के कमरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके कारण होटल में रहना अधिक किफायती हो गया है और नागालैंड राज्य में पर्यटन के व्यापक विकास को समर्थन मिला है। नए जीएसटी सुधारों ने नागालैंड कॉफी के लिए भी नए अवसर पैदा किए हैं। भुनी हुई फलियों पर दरें 12% से घटाकर 5% और कॉफी के अर्क पर 18% घटाकर 5% कर दी गई है। इस कमी से कुल लागत 6.25% से 11% तक कम होने की उम्मीद है। शिवांग मिश्रा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार।
प्रदेश सरकार ने समाधान योजना के तहत 3 माह से अधिक के बिजली बिल बकायेदारों के लिए योजना शुरू करके उपभोक्ताओं को एक बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत अब तक कंपनी कार्य क्षेत्र में 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। साथ ही लगभग 2,70,00,000 रुपए की मूल धन राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है। इसमें लगभग 1,53,00,000 रुपए सरचार्ज माफ किया गया है। कंपनी के प्रबंध संचालक ने कंपनी के बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। बात मौसम की करते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छिंदवाड़ा और सिवनी सहित कुछ जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जिसके कारण कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जो अगले कुछ दिनों में हिमालयी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इससे उत्तर भारत में बर्फबारी और ठंड बढ़ने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। गुना जिले में कैंसर रोग की प्रारंभिक पहचान और उपचार संबंधी परामर्श के लिए कल स्थानीय रेड क्रॉस भवन में निशुल्क कैंसर परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम के एक निजी स्कूल में कानून की पाठशाला आयोजित की गई। इस दौरान करीब 100 से अधिक छात्राओं को पुलिस द्वारा बैड टच, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। जबलपुर में 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं की वाटरफॉल में डूबने से मृत्यु होने की खबर है। छिंदवाड़ा कलेक्टर के निर्देश पर गठित निरीक्षण दल ने 3 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। इनमें चिन्हित दवाइयों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने आज मोरझरी स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा देवास में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 8 नवम्बर से होगा। इस उत्सव में विभिन्न विधाओं, लोकगीत, लोक नृत्य, भाषण, कहानी लेखन, पेंटिंग, कविता लेखन और विज्ञान मेला प्रदर्शनी का आयोजन होगा। और युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगरमालवा में 7 नवंबर को युवा संगम का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।